हयात मुबारका का आखिरी दिन सोमवार यानी मंडे की सुबह अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे कि रसूलुल्लाह ने हज़रत आयशा के हुजरे का पर्दा हटाया और लोगों की तरफ़ देखकर मुस्कुराए। इस पर अबू बकर सिद्दीक एड़ियों के बल पीछे हटे और समझा कि आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाना चाहते हैं। बकौल हज़रत अनस के नबी सल्लम को देखकर मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहा कि नमाज ही के अंदर फितने में पड़ जाएं, यानी आपकी मिजाज पुरसी के लिए नमाज तोड़ दें। लेकिन रसूलुल्लाह ने हाथ के इशारे से फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो। फिर हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए और पर्दा गिरा लिया। क्या सहाबा के दिल पे गुजरता होगा। आप देखिए कि एक कंदील है ना, तो वो टुमटमाए, आपको दिख रहा होता है क्या बंदर, बिल्कुल तेल थोड़ा है और बिल्कुल थोड़ी सी मोमबत्ती रह गई। अब ये किसी वक्त भी धागा खाली रह जाएगा और मोम ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी के आखिरी सांस इस तरह से खुलते हैं, पता भी नहीं चलता। और अगर दूसरों को ना देखें तो अपने आप को ही देख लीजिए। क्या हम में से किसी को लगता है कि मेरी ज़िंदगी की शम्मा कब बुझने वाली है? सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अल्लाह के नबी को देखकर साहबा का दिल कितना खिला होगा, लेकिन उसके बाद उनको नहीं पता कि ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उसी दिन या उसी हफ्ते रसूलुल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और कुछ सरगोशी की, वो रोने लगी। फिर कुछ सरगोशी की तो हंसने लगी। हज़रत आयशा ने दरियाफ्त किया तो छुपा ले गईं, लेकिन जब आपकी वफ़ात हो गई तो बतलाया कि आपने पहली बार ये फरमाया था कि आप अपने इसी मरज़ से वफ़ात पा जाएंगे, इसीलिए वो रो पड़ी। और दूसरी बार ये फरमाया था कि आप अहले याल में सबसे पहले वही यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे आन मिलेंगी, इसलिए वो हंसी। और आपने इन्हें ये बशारत भी दी कि आप सारी ख़वातीन आलम की सैयदा यानी सरदार हैं। ये बार दोबारा मिलने वाली बात समझ आई है आपको? यानी नबी सल्लम के बाद सबसे पहले इनकी वफ़ात होगी आपके घराने में से, क्योंकि कुरान और सुन्नत से ये बात साबित हो जाती है कि जब एक बंदा मरता है तो उसके बाद फिर जब उसका कोई रिश्तेदार मरता है और दोनों नेक हैं तो उनको फिर जन्नत में उनकी रूहों की मुलाकात कराई जाती है। इसलिए अगर मौत आ भी जाए तो ये वक्ती जुदाई है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। असल ये कि काम अच्छे किए हों ताकि आखिर में सब जन्नत में मिल जाएं। इधर हज़रत फ़ातिमा ने रसूलुल्लाह के कर्ब की शिद्दत देखी तो बेसाख्ता पुकार उठी, वकुर्बा अबाहू, वकुर्बा अबाहू, हाय अब्बा जान की तकलीफ़, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। आपने हज़रत हसन और हुसैन को बुलाकर चूमा और अज़वाजे मुतहरात को बुलाकर वाज़ व नसीहत की। आप देखिए कि बाप बेटी की मोहब्बत क्या मोहब्बत होती है। चाहे नबी थे और नबी की बेटी थी, लेकिन बाप बेटी की मोहब्बत एक अजीब मोहब्बत होती है। आप देख लें, फितरत का एक असूल है, शायद ऑपोजिट चीज़ों में कशिश होती है। माओं को अमूमन बेटे प्यारे लगते हैं और बापों को बेटियां प्यारी लगती हैं। अक्सर देखे बाप बेटे की कमी बनती है, इल्ला माशाल्लाह, छोटी छोटी बातें लगी रहती हैं, लेकिन बहुत कम आप सुनेंगे कि बाप बेटी की ना बने। दुनिया के एतबार से ना बने तो दुख की बात है, लेकिन दीन के नाम पे अगर आप माँ बाप की किसी बात को पीछे डालते हैं तो ये आजमाइश के साथ साथ अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इस्तकामत का दर्जा भी है। और आपको पता है कि हज़रत फ़ातिमा की 3 बहनें फौत हो चुकी थी, माँ फौत हो चुकी थी खदीजा, भाई 4 थे या 3 थे जितने भी थे, सब फौत हो चुके थे। आप क्या कहेंगे फ़ातिमा को कि जिसको अब इशारे मिल रहे हैं कि अब आपका भी साथ जाने वाला है? लिखिए ज़रा अपने ऊपर, इतने सदमे अगर मुझे पड़े हों कि मेरी माँ भी ना हो, मेरे 3 भाई फौत हो गए, मेरी 3 बहनें फौत हो गईं, और अब मेरे बाप की जुदाई का वक्त है, तो मैं क्या कहूँगी? हाय सारे दुख और सदमे मेरे ही लिए, सारे गम मेरे ही नसीब में लिखे हुए थे। लेकिन हम फातिमा को भूल जाते हैं। کہ ان کی اس وقت کیا کیفیت تھی. یہاں تو مختصر ہے نا, آپ رحیق و مختوم کے آخر میں پڑھیں تو ان کے اشعار بھی ہیں. کہتی ہیں, ہائے جبرائیل اب آئے گا تو ہم کیسے تجھے بتائیں گے, یعنی نبی چلے گئے تو وہی کا سلسلہ ہی ختم. اور مطلب ان کو غصہ آ رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی جا رہی تھی نا, تو حضرت فاطمہ کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کس حوصلے کے ساتھ میرے باپ کی قبر کھود رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے عظمت ہے نا, باپ چاہے فاطمہ کو جانا اس کو بھی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ کیا فاطمہ کو یہ صدمہ دیتے, غم دیتے؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے لیکن اللہ والا نہیں ہے. انسانوں میں اعلیٰ ترین لیکن اللہ کے حکم کے بندھے ہوئے. رحیق و مختوم جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی, موٹی کتاب ہے, ابھی بھی پڑھا رہی ہوں, کہیں تھوڑی سی رہتی ہے, لیکن جب میں نے خود پڑھی, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے شوق سے کوئی سیرت کی بک پڑھی تھی, تو اکیلے میں پڑھتی تھی, میری عادت ہے رات کو ہی پڑھنے کی زیادہ, تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے ماسٹرز کے امتحان تھے, میرا خیال ہے اس میں تھی یا ویسے تھی, آئی ڈونٹ نو, اس کے بالکل قریب تھے دن. تو میں رات کو اکیلے میں بیٹھی ہوئی تھی, سب سو رہے تھے, تو میں وہ بک پڑھ رہی تھی, شادی سے پہلے کی یہ بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا باب شروع ہو گیا, پھر حضرت فاطمہ کے یہ قصے. اتنا میں روئی, یعنی مجھے عام طور پہ رونا کم آتا ہے, قرآن پڑھنے کے بعد زیادہ آتا ہے, پہلے نہیں آتا تھا, بلکہ اتنا میں روئی, مجھے سمجھ نہ آئے کہ مجھے ہوا کیا. جیسے آپ کہہ لینا کہ کسی بالکل اپنے کی موت. سچ بتا رہی ہوں کہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اتنی محبت بھی نہیں تھی, بس ٹھیک تھا, یہ الگ بات ہے کہ اس سیرت کے پڑھنے کے دوران ہوئی محبت. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ حضرت فاطمہ کا غم کیا ہے, خوب جس کو آپ کہہ لینا کہ دل کھول کے رونا, سارے آنسو بھی رک جائیں تو پھر بندے کا آنکھیں خشک ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد مجھے ماسٹرز کے ایگزام دینے تھے, تو مجھے جانا تھا کہیں, بالکل نارملی ایسے ہی گئے گھر سے جیسے جاتے ہیں, رخصت کرنا تھا ان کے ساتھ, کسی کے امی تھی, مجھے دوسرے شہر جانا تھا, میری والدہ میرے ساتھ ہی, کچھ اور بھی تھے, میرے والد, میرے بھائی, ہم سب کراچی میں تھے اس وقت. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے میرے ایک بھائی کے ساتھ حیدرآباد جانا تھا کوئی اپنے کاروباری سلسلے میں, اور میں نے اور لوگوں کے ساتھ, امی کے ساتھ پنجاب جانا تھا. اچھا کبھی بھی نہیں گئے, کم اللہ ماشاءاللہ کبھی, لیکن شوق کیا ہوتا ہے کہ ٹرین کا سفر کرنا ہے نا, تو ہم نے ضد کی کیونکہ میری بھابھی اور ان کے بچے ساتھ تھے, تو وہ کہتے تھے کہ میں ٹرین کے سفر کا شوق ہے, تو ہم سب اس سفر میں ٹرین میں جا رہے تھے. اب ہمارے والد صبح صبح میں بھائی کے ساتھ نکل رہے تھے حیدرآباد کے لیے, تو ہم نے ان کے آنے سے پہلے بیچ دن کے حصے میں چلے جانا تھا پنجاب. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ, اور میں نے اپنے پیپرز دینے تھے ماسٹرز کے, تو ابو ملے جس طرح بالکل نارملی, اور جو بھی ان کی عادت تھی, جو بھی لینا دینا کر کرا کے, پھر اس کے بعد وہ چلے گئے, پھر تیاری کر کے ہم لوگ بھی چلے گئے. ٹرین میں ہماری رات گزری, ہمیں کچھ نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں پتا. اس دور میں شاید سیل فون بھی نہیں ہوتے ہوں گے, ہوپ فلی, مجھے یاد نہیں ہے, اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس نہیں ہوگا, یا ہوگا تو انہوں نے کیا نہیں. ہم لاہور پہنچے, جب ہم اسٹیشن پہ پہنچے تو انجوجل چہرے تھے, ایکسپیکٹ تو بندہ ایک آدھے کوئی کرتا ہے جو لینے آتا ہے, پہلے ایک خاندان کے دکھے, پھر دوسرے, امی کے ماموں تھے وہاں, میرے اپنے ماموں, ایک ماموں, پھر پتہ نہیں اور کون کون تھا. ایک دم جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کھٹک سی ہوتی ہے دل کو کہ یہ سب کیوں, کچھ نہیں انہوں نے ہمیں کہا نا, لیکن لگ رہا تھا کہ چپ ہیں. خیر جلدی سے سامان اٹھواؤ, جلدی کرو, بھابھی کے مہک کے گھر آئے ہم لوگ, ادھر نارمل فیل کرا رہے تھے کہ ہمارے آنے کی خوشی ہے, لیکن وہ دل میں ایک کھندک سی تھی نا, کھٹک تھی تھوڑی سی, ہمیں لگا کہ پتہ نہیں بھابھی کے گھر والے یہ خوش نہیں ہیں, دل میں کچھ آئے کبھی کچھ آئے. خیر جب کھانا وانا کھا لیا, اور ان کے گھر بھی خاندان کے لوگ جمع, ان کے قریب کے لوگ, قصہ مختصر کہنے کی بات ہے کہ اس کے بعد بس انہوں نے اس طرح ہمیں اندازے سے بتایا کہ آپ لوگوں نے کراچی جانا ہے واپس نا, تو بھائی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بس اتنی بات انہوں نے ہمیں بتائی. ظاہر ہے کہ جو بھی ہونا تھا, لمبی کہانی ہو جاتی ہے بات کریں تو, لیکن یہ کہ ہم نے بہت کہا کہ بھابھی بچوں کو تو چھوڑ دیں ادھر ہی, یہ تو بیچاری آئی ہیں بچوں کے ساتھ, کوئی بات نہیں ہم ہو کے آ جائیں. نہیں 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 رضوان نے کیسا آئیں گے, چلے ہمیں ایئرپورٹ پہ لے گئے, کچھ نہیں ہمیں پتا, شک دل میں آیا کیا ہوا ہے, کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں. جہاز میں گئے, رات کو بیٹھے, سفر جو بھی تھا, बस घर पहुंचे, छोटा भाई मेरा लेने आया हुआ था एयरपोर्ट पे ना, साथ मेरी बहन का बेटा था, बहन जो सियालकोट में थी उस वक्त, और हम पंजाब जा रहे थे कि फिर आगे उसको मिलना है। जब उसके साथ सुहेब को देखा तो और परेशान, ये क्या हुआ। खैर, एयरपोर्ट से निकलने से और रास्ते में फिर भाई ने, फिर मतलब जब उसे नहीं रहा के अबू नहीं है, यानी ये वो जुमले हैं आप देखें कि जिसके लिए बंदा कभी तैयार नहीं होता ना। और उससे पहले वो बच्चे के मुंह से कोई ऐसा एक जुमला निकल गया कि मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, क्या कह रहे हो बेटा, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि मैं पता था बीमार है या कुछ में भी दिल का हुआ है कुछ है। खैर, फिर रास्ते में भाई भी रोया फूट के, और बस उसने कहा कि शोर नहीं करना, घर में सब लोग जमा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि घर पहुंच के जब हम गए तो हमारा बहुत बड़ा घर था, वहाँ गाड़ियाँ बाहर ढेर। आप बिल्कुल, मैं इस वक्त बता भी रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं कोई एग्जेजरेशन कर रही होंगी, हमारे ख़ानदान के वो लोग अबू धाबी से पंजाब पूरा घर भरा हुआ, इधर उधर से जो कोई आ सकता सब हमारे घर थे, हमारे करीबी बाहर अबू धाबी, इधर दुबई, वो लोग भी पहुंच गए। सिर्फ एक रात में ये सब हुआ। और हुआ क्या कि गए वापस आए अबू, जब जो हमें बाद में पता चला तो शाम को वापस आ गए घर आए, भाभी का बच्चा छोटा, उसको खाना अपने हाथ से खिलाया, खुद भी शायद खाया, वुजू करने के लिए बाथरूम में जा रहे हैं, और बाजू भी नहीं वो जैसे ऊपर कर लेते हैं, बाथरूम में गए हैं और वुजू करने के लिए, लेकिन जब वापस आए हैं ना तो बाहर आके बेड पे बैठ गए, और आवाज़ थी भाई को कि मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है ना, तो उसने कहा डॉक्टर पे चले, कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस वो सफ़र किया, थकन है तो मुझे लेटना है। बस फिर उसके बाद जो भाभी ने और भाई ने सुनाया, 5-10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने जान दे दी। यानी ये जिंदगी है। लेकिन जो बात आपको बताने लगी हूँ कितना अचानक, और मेरा हाल ये था कि आज भी अगर मेरे ख़ानदान का कोई बंदा ये बात सुन रहा है तो वो मानेगा कि मेरे बारे में यही सब कहते थे कि ये अपने अब्बू की दोस्त है, सहेली है। इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतनी मोहब्बत, और ख़ास तौर पे ये पढ़ने पढ़ाने में, यानी अनबिलीवेबल किस्म का साथ था। सब सो जाते थे ना तो हम रात को बैठे बातें करते रहते थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, मोहब्बत तो अपनी जगह पे होती है ना। तो सबको गम ये था कि अब इसको पता नहीं क्या होना है अचानक, और मैं पेपर देने जा रही थी, ये भी सदमा था, और भी जो भी था। यकीन करें जब हम वापस आए, मगरिब का वक्त करीब था या क्या था, नीचे वाले फ्लोर में लोग जमा थे, और यही बस अब आता है कि जल्दी से इनको पास लाएं क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं लेके जाना है। सिर्फ एक झलक देखी अपने वालिद की, बिल्कुल एक झलक, और इतना स्माइली चेहरा कि बिल्कुल खिला हुआ, जिस तरह कोई कह सकता है कि कोई हंसता है तो उसके डिम्पल उनके पड़ते थे, स्माइली फेस, बस एक नज़र। फिर उसके बाद ऐसे मुझे लग रहा था कि मैंने जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ। उस वक्त मुझे फातिमा याद आई, फिर मुझे समझ आया कि ये 3-4 दिन पहले क्यों रोई मैं इतना, अल्लाह को पता था। मेरे जहन में एक ही जुमला था कि फातिमा का बाप बड़ा कि मेरा बड़ा। यकीन करें, बिल्कुल सब्र, हौसला, कोई आहोजारी नहीं, कुछ नहीं। उस वक्त भी दिल मुतमईन था, हैरत की बात यह है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम औरतों में ऊपर फिर गए तो लोगों की आदत है उसको मिल, रो, उसको गले लगा, रो रो, जो भी लोग करते हैं। इतनी देर में जाने का वक्त आ गया, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला मेरा, थोड़ा दर्स वगैरह देती थी उस वक्त भी, उधर बुर गए तो जैसे बड़े ने चलो चलो दुआ करते हैं। यकीन करें कि मैंने उसी वक्त अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के, मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगे कि इस वक्त इन सब से मुझे भीख भी मांगनी पड़े ना तो मैं इस बात की भीख मांगूं कि मेरे बाप की कोई चीज़ अगर आपको लगी कभी कोई अच्छी कोई बुरी तो आप उनको भी माफ़ कर। यकीन करें मैंने वहाँ बैठ के, बिल्कुल आज भी मुझे वो अपना खुतबा, अपना दर्स याद है कि मैंने दर्स दिया, मुझे एक दो ने कहा ना चलो और दुआ करो दुआ करो, बिल्कुल मुतमईन। आज भी हमारे ख़ानदान के कुछ लोग हैं जो उस मौके पर शायद पहली दफ़ा हमारे घर आए, क्योंकि दुख में सारे ही आ जाते हैं, आपको ये अच्छी तरह पता होगा। पिछली दफ़ा भी मैं कभी गई तो उन्होंने कहा कि मैं वो दर्स नहीं भूला जो तुमने उस वक़्त दिया, और आज मुझे नहीं पता 10-12 साल तो हो ही गए होंगे इसको ना। खुद से बात, फिर अल्लाह ने जो दिल में डाला, फिर दुआ की उस वक़्त, और एक ही तड़प थी कि रब्बे रहम हुमा कमा रब्बे यानी सगीरा। वही उन्हीं के हाथों की लाई हुई चीज़ें, माइक सिस्टम, पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है जिस तरह यहाँ माशाल्लाह हम लोग सजा के बैठते हैं ना, पाकिस्तान में तो बिजली हो तो बड़ी बात थी, लेकिन ढूंढ ढूंढ के चीज़ें लाते थे। इतना सदमा, मतलब इस तरह होता, लेकिन दिल बड़ा मुतमइन था, कोई आंसू नहीं थे कि फातिमा का बाप तो, उसकी तो ज़्यादा को ज़रूरत थी, तो हम अपने ज़ाती गमों पे क्यों इतना रोते हैं, हम क्यों रोते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा गम, हम सिर्फ रिश्ते हैं, मेरा बाप चला गया मेरा क्या होगा, मेरा भाई मेरी बहन, हम सिर्फ मैं पे रहते हैं, हम कभी इस उम्मत का दर्द नहीं रखते। फिर मुझे यकीन है कि, यकीन करें कि ईमान की हद तक यकीन है, अल्लाह को दिलों के मामले पता हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वाख़लुफ़ ली खैरा मिन्हा। ये दुआ आप लोगों को भी सिखाई हुई थी, खुद भी पढ़ी, बहुत पढ़ी अबू का सोच के, ज़ुबान पे आज तक नहीं मेरे आता खुल के कि वो नहीं है, मेरे से वो जुमला नहीं बोला जाता, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन है, मुझे लगता है कि ऐसे ही है बस कहीं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फिर वो जो मुझे सदमा मिला, या मुझे उसका बेहतरीन अल्टरनेट अपने शौहर की सूरत में मिल गया, बिल्कुल मेरा ईमान है कि बाप के बदले में बाप तो नहीं मिलते ना, लेकिन अल्लाह रिश्ते बदल देता है, जितना उनका दीन का साथ था, जितना फिर आगे, फिर कहानी आगे ना। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम अपना मकसद दीन को रखेंगे ना, तो हमें दीन को आगे करना है और बेहतरीन फिर सदका जारिया बने। और अल्लाह के नबी की दुनिया को ज़्यादा ज़रूरत थी या मेरे और आपके बाप की? हम ज़िंदगी में उनकी बात भी नहीं मानते, बाद में रो रो के पता नहीं हाल दो हाल कर देते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि माँ जिंदा है, कोई उसको याद नहीं करता, ना बात मानता उसकी, और बाप मर गया तो उसको याद करते हैं। हम मरों को बहुत याद करते हैं, जिंदों की कदर कोई नहीं करता, हमारे सामने जो होता है हम उसकी कदर कोई नहीं करते, जो पीछे होता है तो हम कहते हैं हाय कितना अच्छा था वो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हज़रत फातिमा का ये दर्द हमारे अपने दिल में भर दिया, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे अबू से इतना प्यार था कि कभी मैं अपने वो जवानी का जो जहन होता है तो सोचता ही है ना बंदा, कोई मर गया कुछ, तो मैं कहती थी अल्लाह करे अपने पूरी फैमिली में से सबसे पहले मैं मरूँ, यानी भाई बहनों मम्मी अबू में से मुझे किसी का गम ना पहुँचे, इतना दिल छोटा था। और मैं कहती थी अल्लाह मुझे कभी भी अपने प्यारों की मौत का गम ना दिखाना। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अब्बू का जो मैंने कुछ नहीं देखा ना, उनके आखिरी ये बातें, तो ये मेरी दुआ कबूल हुई है कि अल्लाह ने मुझे उनका कोई गम नहीं दिखा, और मैंने इतना उनका स्माइली चेहरा देखा आखिरी कि मुझे नहीं लगा कि मेरे बाप को कोई तकलीफ़ हुई। लेकिन आप सोचिए हज़रत फातिमा तो अल्लाह के नबी को देख रही थी ना। वखुर बाबा हो हाय अब्बा जान की तकलीफ़। आपने हज़रत हसन और हुसैन को बुलाकर चूमा और अज़वाजे मुतहरात को बुलाकर वाज़ो नसीहत की। इधर लम्हा ब लम्हा तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी, और उस जहर का असर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया जो आपको खैबर में खिलाया गया, चुनाचे आप इसके अलम की शिद्दत महसूस करने लगे। आपने चेहरे पर एक चादर डाल रखी थी, जब सांस फूलने लगता तो चेहरे से हटा देते। इसी हालत में आपने फरमाया यहूदो नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया, मकसूद ये था कि इन जैसे काम ना करना। सरजमीन अरब में दो दीन न बाकी रहने दिए जाएं, यह आखिरी इरशाद और वसीयत थी जो आपने लोगों को फरमाई। इसके बाद कई बार फरमाया अस्सलातु वस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज नमाज और तुम्हारे जेरे दस्त, यानी लौंडी और ग़ुलाम, और इसमें औरतें भी आती हैं। यानी आखिरी वसीयत आपकी थी कि दो चीज़ों का ख्याल रखना, एक नमाज़ों का और एक औरतों का, अपने डिपेंडेंट्स का। आज उम्मत को पूछिए ज़रा कहाँ है अल्लाह के नबी की मोहब्बत, नमाज़ों का हाल क्या है, और अपने से छोटों के साथ क्या मामला करते हैं आप। नज़ा की घड़ियाँ हैं, नज़ाए रवां और वफ़ात। फिर नज़ा की हालत शुरू हो गई, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपने सीने और गले के दरमियान सहारा देकर टेक लिया, जैसे किसी को पकड़े तो यहाँ पे उसके सर रखवा दिया जाता है ना टेक देने के लिए। इसी दौरान इनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए, उनके पास खजूर की ताज़ा शाख की मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की तरफ देखने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा समझ गई कि आप इसे चाहते हैं, उन्होंने पूछा तो आपने सर से इशारा किया कि हाँ। चुनाचे उन्होंने मिसवाक लेकर चबाई और नरम की, फिर आपने इसे लेकर नहायत अच्छी तरह से मिसवाक की। आपके सामने कटोरे में पानी था, आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पोंछते जाते और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्ना लिल मौती सकरातिन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के लिए तो सख्तियां हैं। और रिवायत में आता है कि आपको आम लोगों से दुगनी मौत की तकलीफ़ थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने ज़्यादा दर्जे देने होते हैं ना, अल्लाह ताला फिर इंसान को उतनी मुश्किलात में भी डालता है। फिर आपने दोनों हाथ चुंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की और दोनों होंठों पर कुछ हरकत हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, इन अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा और सालेहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक आला में पहुंचा दे, ए अल्लाह रफ़ीक आला। आखिरी फ़िक्रा 3 बार दोहराया और रूह परवास कर गई, हाथ झुक गया और आप रफ़ीक आला से जा मिले। ये सोमवार रबी अव्वल की 12 तारीख और हिजरत का 11वां साल था। इस वक्त आपकी उम्र 63 साल पूरी हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया से चला गया। जितने दुनिया में आए या जितने आएंगे, उन सब में सबसे खूबसूरत मुकम्मल वो जिसकी ज़रूरत थी वो दुनिया से चला गया। तो आप सोचिए फिर हम रहेंगे, लिखिए ज़रा, मैं रहूँगी इस दुनिया में, आज की डेट लिखें। हम में से नहीं पता किसी को किसकी मरने की डेट क्या है। डेट ऑफ बर्थ का तो पता है ना, डेट ऑफ डेथ नहीं पता किसी को। अक्सर आप देखते होंगे कागज़ों में DOB लिखा होता है ना, डेट ऑफ बर्थ, और बास की तो जान निकलती है अपनी डेट ऑफ बर्थ पे कि हाय मेरी डेट ऑफ बर्थ आने वाली है, पता नहीं क्या सोने का किंगरा दुनिया पे आ गया था कि अब मैंने उसको लोगों को मना मना के दिखाना है कि मैं पैदा हुई थी। करतूत देखे बंदा, अपने काम देखे, अल्लाह की नज़रों में अपना मुकाम देखे और अपनी सेलिब्रेशंस देखे। 4 5 6 फुट का बंदा अकड़ अकड़ के दिखाता है, देखो मैं पैदा हुआ था। लेकिन कभी किसी ने अपनी डे ऑफ डी भी लिखी? कभी आप डी ऑफ डी दिखा लिखा हुआ आपने? किसी को पता है? अपने हाथ से लिखिए और पूछिए अपने आप से, पता नहीं मेरी डेट ऑफ डेथ क्या है, महीना 11वां आएगा या 12वां या पहला या 10वां, डेट 1 से 30 31 के बीच में कौन सी होगी, और सन 2000 कितने के ऊपर जाएंगे हम, 14 15 16 18 20। जो पीछे गए वो किधर है? कुछ साथी थे ना हमारे साथ ज़िंदगी में, आज नहीं है ना, रिश्तेदार थे आज नहीं है, किधर गए? सब भूल जाएंगे, कुल्लू मन अलैहि फ़ान। इतने छोटे हम, बच्चों की माएँ ले जाता है अल्लाह हाथों में, माओं की गोद से बच्चों को ले जाता है। कुछ करना है तो आज करना है, कोई किसी पे एहसान ना जतलाए, अल्लाह का एहसान समझे कि उसने मौका दिया मुझे खिदमत का। हम फख्र करते हैं, बड़े हम सोने के पर लग गए हमें, हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ जितना दीन का काम आपके हाथ से अल्लाह कराए, आप टूटें रोएं कि पता नहीं अल्लाह दूसरों के लिए तो मुझे बना रहा खैर की अलामत, मैं खुद क्या हूँ, ये तो मेरे खिलाफ़ हुज्जतें कायम हो रही हैं कि मैंने खुद कोई नहीं अच्छे काम किए। सहाबा करम तड़पा करते थे कि आज तो अच्छा काम कर रहा हूँ, पता नहीं मौत के वक्त क्या कर रहा हूँगा। तो हर एक अपनी मौत को याद करे नबी के वक्त के साथ।